लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आर्थिक और सामाजिक संकट के बावजूद वे अपना व्यवसाय जारी रखने और अपने समुदायों की सेवा करने के तरीकों की तलाश करने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर अलेक्स एक्का यीशु समाजी के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। छट्टनागपुर की कलीसिया के इतिहास में संतन्ना के पुत्रों के धम्म समाज की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना है। ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन यीशु समाजी के छट्टनागपुर में पांव रखने के 12 साल होते ही धम्म समाज की नींव पड़ी थी। यह ईश्वर की विशेष कृपा रही कि हमारे पूर्वजों ने ख्रिस्त धर्म को सहज स्वीकार किया, और इतना ही नहीं, कुछ सासी बहनों ने समाज की परंपराओं को छोड़कर ख्रिस्त एवं अपने लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय किया। इस तरह ईश सेविका माता मेरी बिरनादित ने 26 जुलाई 1897 को संत अन्ना के पुत्रों के धम्म संघ रांची की स्थापना की। खुशी की बात है कि धम्म समाज ने अब 125 वर्षों की लंबी यात्रा तय कर ली है। इस जुबली वर्ष में धम्म बहने अपने इतिहास को पलट कर देख रही हैं। वे ईश्वर को उनके महान कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए उन उपकारकों की याद करना चाहती हैं, जिन्होंने धम्म समाज के विकास में कई तरह से उनकी मदद की है। उनके सम्मान में एक किताब लिखी गई है, जिसके लेखक हैं फादर अलेक्स एक्का यीशु समाजी। फादर अलेक्स एक्का इस भेंट वार्ता में बतला रहे हैं कि इस किताब से छट्टनागपुर की कलीसिया किस तरह लाभान्वित होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है फादर अलेक्स एक्का यीशु समाजी के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
तो लिली ग्रेस टुपनो, जो हमारे अभी सुब्रे जनरल हैं, उन्होंने कहा कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए और भूतपूर्व सभी धर्म गुरुओं के बारे कुछ लिखिए, जिससे कि हम जान सकें कि उन्होंने क्या किया है। हम प्रभावित होंगे, हमारे धर्म बहने प्रभावित होंगी और अन्य लोग भी। हमने कहा इससे बढ़कर क्या आशीर्वाद मुझे हो सकता है। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। और जहाँ तक उनके जीवन के लिए सामग्री की बात है, तो अधिकतर लोग तो यीशु समाज ही रहे हैं, चाहे वे बिशपगण हों या पुरोहितगण हों। तो हमारे रांची प्रोविंस में मासिक पत्रिका निकलती है, रांची न्यूज बुलेटिन। तो हर एक के बारे बात लिखी रहती है जो स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो चूंकि ये पहले से उपलब्ध था, मैंने आप लोगों की धर्म बहनों को कहा कि उनको ढूंढ कर लाइए। एक लिस्ट बनाई गई जिसमें कम से कम 33 लोगों का नाम था। तो जो कुछ भी मिल पाया वे हमारे समक्ष वो लाई, और जैसे भी समय मिला मैंने कोशिश की उनका संक्षेपण करने के लिए। और उस तरह से मैंने अभी तक कम से कम 25 लोगों का वहां पर जिक्र है संक्षेप में, उनके जीवन के बारे, संत धर्म समाज के लिए जो कुछ किया उसके बारे, और किस तरह से वे एक मिशनरी के रूप में साबित हुए। संक्षेप में यही है इस पुस्तक के बारे।
सचमुच ये पूरी कलीसिया के लिए, मतलब झारखंड की छोटानागपुर की कलीसिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हम इसके इतिहास के बारे कुछ जानते हैं, पूरी तरह नहीं जानते हैं। और जैसे आपने बताया कि आपने अपने धम्म समाज के आर्काइव है, वहां से आप खोज करके ढूंढ करके निकाले हैं नई बातों को, तो बहुत ही वो अच्छी बात है जो हम लोगों को मिलेगा। तो आप इसके द्वारा क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी कलीसिया?
मेरी उम्मीद तो यही है कि सबसे पहले जिस तरह से मैं लाभान्वित हुआ हूँ, एक महीने के अंतर्गत मैंने इनके कृत्यों की रचना की है, और मुझको लगा कि जब मैं उनके कामों को, लिखित कामों को पढ़ रहा था, ध्यान दे रहा था, चिंतन कर रहा था, तो लगा कि मैं एक प्रार्थना में समय बिता रहा हूँ, एक महीना का की जो इंद्र उपासना होती है ना, उसी प्रकार। तो मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ उन गुरुओं के बारे पढ़कर जिन्होंने खास रूप से संत धर्म समाज की सहायता की है। तो मैं चाहूँगा कि अन्य लोग भी वैसे ही प्रभावित हों और इस तरह उनमें भी ये धार्मिकता बढ़े, ना केवल संत समाज की बहनों के ऊपर लेकिन अन्य लोगों के ऊपर में भी, और वे लोग भी ऐसे ही लोगों के समान कर्तव्य का पालन करें और प्रभावित हो सकें धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, और लोगों की सेवा के लिए अपने आप को वो दे सकें। तो यही सोचता हूँ कि इस पुस्तक से लोगों के लिए लाभ होगा।
जरूर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि संतन्ना धम्म समाज जो जुबली मना रहा है, तो समाज को आप इस जुबली के अवसर पर क्या शुभकामना देना चाहेंगे?
समाज को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धन्य है ये हमारा देश समाज, जहां यह धम्म समाज पनप सका तो हमारे गौरव की बात है, हमारे समाज के लिए ही। और चाहूंगा कि वे इसका कदर करें और इसको बढ़ावा दें हर तरह से, बहनों को धर्म समाजी बनने भेजने के लिए, अपने बाल बच्चों को इनके विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, और जैसे भी बन पड़े उनको मदद मिले हर तरह से जब वे मुसीबत में हो, और इस तरह से अन्य धर्म समाजों के समान ये धर्म समाज भी अपना काम कर सके, तो लोग इनके लिए भी तन मन से काम करें। यही मैं चाहता हूँ कि लोगों में यह विचार पनपे और बढ़े।
धन्यवाद। अब मेरा आखिरी सवाल होगा, ये छोटा नागपुर की कलीसिया जहाँ पर ये धर्म समाज की उत्पत्ति हुई है, ये कलीसिया को आप क्या बोलना चाहेंगे?
मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन सभी बिशपों का जिन्होंने यह पहचान लिया कि असल में यह ईश्वर की योजना है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए अन्य धर्म समाजों के समान इसका भी सम्मान करें, इसको आगे बढ़ाएं और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकें, ना केवल संख्या को लेकर लेकिन धार्मिकता को लेकर, जो विशेष धार्मिक तथ्य है उसको लेकर, जिससे कि ईश्वर की विशेष सेवा और महिमा हो सके, जो कि आप लोगों की मौलिक बातें हैं यीशु के प्रेम से, जो आप लोगों का आदर्श वाक्य है, वह निरंतर बढ़ता रहे, यही मैं कामना करता हूँ।
बहुत धन्यवाद फादर, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं छोटा नागपुर की कलीसिया के लिए, संतन्ना धम्म समाज के लिए और हम सभी के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुमूल्य समय के लिए, और शुभकामना है कि आप जिस उत्साह से अपने कार्यों को करते जा रहे हैं और दुने उत्साह के साथ अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर एलेक्स एक्का येसु समाजी के साथ भी भेंट वार्ता को सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
जो था, जो है, जो है आने वाला, जो था, जो है, जो है आने वाला, युगान युग से जो है जिंदा प्रभु यीशु है वो विश्वास।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका आज कल की पीढ़ी, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, समाज में नई और पुरानी पीढ़ी की सोच से आज के बुजुर्ग दोराहे पर खड़े हैं। युवा पीढ़ी नई सोच के साथ जिंदगी के पथ पर दौड़ रही है, तो बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती। कुछ लोगों का मानना है कि बुजुर्ग आज के युवक युवतियों पर तीखी टीका टिप्पणी करते हैं। इनका कहना है कि उनके जमाने में तो मर्यादा थी। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि बुजुर्ग दकियानूसी परंपराओं को ढो रहे हैं। नई पीढ़ी को यह याद करनी चाहिए कि बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है। उनका कहना भले ही उनके लिए दकियानूसी लगे, पर वे उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। वहीं बुजुर्गों को भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव कर युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। युवा बुजुर्गों को मदद करें, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखें, तो बुजुर्गों को भी युवाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका आजकल की पीढ़ी।
क्या ये आजकल की पीढ़ी भी, जब देखो तब आपस में फिल्मों की ही बातें करते रहते हैं। अब वो शर्मा जी का बबलू देखो, अरे उसके पिताजी लाख कह रहे हैं कि दूसरे दिन परीक्षा है भाई, जरा पढ़ लिख लो। लेकिन नहीं, साहबजादे को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो से मतलब है।
अब आप क्यों किसी और के लिए अपना खून जला रहे हैं? वो बबलू अच्छा खासा टॉपर लड़का है, और मान लिया कि कल को वो हो भी गया फेल, तो उसकी फीस हमें तो नहीं भरनी है।
यही बस यही बात तुम्हारी मुझे पसंद नहीं है। आजकल की पीढ़ी भी ऐसे ही सोचती है, हमें क्या लेना देना है। अरे भाई, हम सभी ऐसे सोचने लगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा?
आजकल सभी अपना अपना सोचने को सक्षम है।
आजकल सभी को अपना अपना काम करना जो पसंद है, किसे लेना देना है कि इस बूढ़े को क्या चाहिए। अरे बहू शांभवी, वो केले के पकौड़े बनाए क्या? कई दिनों से मन कर रहा था।
बना दिए हैं पिताजी, आइए, प्याज और पालक के भी बनाए हैं।
हाँ हाँ ठीक है, एक हाथ बार मेरे मन का क्या बना दिया, ऐसा ढिंडोरा पिटा जा रहा है कि बस। आजकल किसी के पास समय ही कहाँ है कि माता पिता के पास बैठकर बातें करें।
पिताजी कहाँ हैं आप? अरे वाह, पकोड़े बनाए हैं। पिताजी आज मैंने हाफ डे लिया है, शाम को हम सभी सिटी पार्क में जाएंगे, वहाँ से सेंट्रल होटल में खाना खाकर ही लौटेंगे।
क्या फिजूल खर्ची लगा रखी है, आजकल की पीढ़ी के पास पैसे क्या आ गए हैं, हर चीज को पैरों की नोक पर ही रखते हैं।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो उसने छुट्टी ली है आपके लिए, ऊपर से आप आरोप लगा रहे हैं फिजूल खर्ची का।
और नहीं तो क्या, जवानी है फुर्ती है, इसलिए पैसे का जोर दिखाना चाह रहा है। कल को मेरे जैसा रिटायर्ड हो जाएगा तब मालूम होगी पैसे की कीमत, यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है।
पिताजी पानी, पकौड़े और लाऊं?
रहने दो। अरे शांभवी, वो गुप्ता जी ने कुछ कागज दिए थे टाइप करने को, हो गए हैं क्या?
जी पिताजी हो गए हैं, आपके दराज के पास रख दिए हैं।
सुनिए जी, आपके लिए गुप्ता जी का फोन है।
हाँ हाँ आया।
माँ मैं क्लास जाकर आती हूँ।
हाँ बेटे, मुन्ना सो रहा है क्या?
जी सो रहा है, उसका दूध बनाकर रख दिया है, बस एक मिनट माइक्रोवेव करना रहेगा।
तुम आराम से जाओ बेटा, आज क्लास में परीक्षा है ना?
जी। अच्छा मैं चलती हूँ।
ठीक है बेटा।
हाँ गुप्ता साहेब बोलिए, क्या हाल है? अरे हमारा क्या है भाई, बस वक्त को कोस रहे हैं और उसी को काट रहे हैं। ये आजकल की पीढ़ी भी, अरे अब अपना जमाना थोड़ी रह गया है। आजकल जिसे देखो बस अपना ही सोचता है, अपना काम करने का किसी के पास समय थोड़ी है। अरे हाँ, वो तुम्हारे कागज बहू ने टाइप कर दिए हैं, अब आजकल की बहुओं से थोड़ा ही होता है घर का काम धाम, बस अपने बच्चों को सास के भरोसे छोड़कर चली जाती है। बस यार चल रहा है, चल रखता हूँ, अपना काम तो खुद ही करना होगा। अपने बुढ़ापे में कहाँ वो सुख जो अपने बाप दादाओं ने भोगा। अब कुछ पत्रिकाओं का चंदा भरना था, अब लगता हूँ उसी काम में।
पिताजी ये लीजिए।
ये क्या है?
ये रसीदे हैं पिताजी, आप हर महीने जो पत्रिकाएं मंगवाते हैं उनकी।
हाँ हाँ रख दे, जरा सा काम क्या कर दिया, प्रमाण पत्र मांगने चला है, और वो आश्रम का ड्राफ्ट बनवा दिया था?
जी बनवा दिया था, और मैं खुद जाकर वहाँ के मैनेजर से मिल आया हूँ, वो कह रहे थे कि आश्रम में 5 और सदस्य आने वाले हैं, इसलिए उनका खर्चा मैंने नकद भर दिया है। और पिताजी ये आपके लिए लाइब्रेरी से किताबें बदला कर लाया हूँ।
हाँ रख दो, किसे आजकल बूढ़ों की फिक्र है, जरा असुविधा हुई नहीं कि कर दिया घर से बाहर। सभी जगह एक ही हाल है, ये आजकल की पीढ़ी तो बस
बस भी करिए जी, कितना बोल रहे हैं। बहू जो कहे वो हुक्म बजाने को तैयार है, आपका छोड़ आपके दोस्तों का भी काम कर देती है। बेटा आपके खाने पीने, दवा दारू, मनोरंजन और समाज सेवा तक का ख्याल रख रहा है, और आप हैं कि उन्हें उन लड़कों के समकक्ष रख रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है।
तो और क्या, तुम इस भ्रम में मत रहना वसुधा कि मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। ये जो अपनी जायदाद है ना, उसके पीछे हो रहे हैं सारे नाटक। ये आजकल की पीढ़ी को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो मिश्रा जी को देखा था, कैसे नरम दिल बनते थे। सारी प्रॉपर्टी जीते जी बेटे के हवाले कर दी और अब जा पहुँचे वृद्धाश्रम।
देखिए जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि इस समय हमारे देश में 35 करोड़ से भी ज्यादा बूढ़े हैं जो अपनी संतानों पर आश्रित हैं, और देश के वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या कुल इनके 5% से ज्यादा नहीं है जो घर से निकाले गए। तो क्या उन 5% नई पीढ़ी के लोगों के पीछे आप सभी को बदनाम करते फिरेंगे?
लेकिन हमारे बच्चे भी ऐसे निकले तो, यदि कल को उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया तो?
देखिए, आप अच्छा व्यवहार रखेंगे ना तो आपके पास फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी आपको हाथों पर उठाकर रखेंगे, लेकिन ढेर सारी जायदाद रखकर भी आप ये फूटी जबान चलाएंगे तो आपके प्रति किसी के मन में क्या सम्मान रह जाएगा?
ये सब कुछ तुम्हें सुधीर ने कहा होगा।
वो क्यों कहने लगा कुछ भी? क्या मेरे आँख नहीं है देखने को, कान नहीं है सुनने को? अपने दोस्तों की महफिलें जमाते हैं आप, सभी के बीच बहू से चाय पकौड़े की फरमाइशी करते हैं आप, और वही बहू जब सभी को प्रेम से नाश्ता परोसती है तब उसी के सामने कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए तो जरा क्या गुजरती होगी उसके मन पर।
लेकिन मैं उसे थोड़े ही कहता हूँ।
लेकिन उस समय नई पीढ़ी यानी वो ही होती है ना वहाँ, उसे तो यही लगता होगा कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए ये पिताजी को कभी भी संतुष्ट नहीं रखा जा सकता।
अरे लेकिन ये तो उसका कर्तव्य है ना।
माना कि ये उसका कर्तव्य है, लेकिन जब वो अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रही है तब आप उसे सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं?
देखो वसुधा, मेरे मन में तो ये बात नहीं होती। चारों ओर सभी के साथ जो होता हुआ देखता हूँ वही सबके सामने कह देता हूँ।
लेकिन इन सभी में आप शामिल नहीं है क्या? क्या आप अपने दोस्तों को ये नहीं बता सकते कि आपके बेटे बहू कितनी अच्छी तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं? आप लोग तो जैसे मौसम और राजनीति की चर्चा करते हैं वैसे ही आकर नई पीढ़ी की बुराई करने लग जाते हैं। आखिर कभी अपनी ओर भी तो देखिए।
वसुधा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सचमुच में बड़ा भाग्यवान हूँ, गुप्ता जी के बेटे बहू भी उनका ख्याल रखते हैं।
और आप दोनों ही हैं जो सबसे ज्यादा इस नई पीढ़ी के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, हर पीढ़ी के साथ जीवन बदलता है, उसकी शैली बदलती है, थोड़ा हमें भी बदलना चाहिए। अब आपके जमाने में हम औरतें घर में ही तो रहती थी, कितना मन होता था कि कुछ अपना कर पाए, लेकिन घर में कहाँ इजाजत थी। आजकल की बहू बेटियां अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पा रही हैं तो उन्हें करने देना चाहिए।
वसुधा, तुमने सचमुच मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं तो यही सोचता था कि यदि गुस्सा ना दिखाओ और रोब ना झाड़ो तो ये नए बच्चे हमारी बातें सुनेंगे ही नहीं।
पिताजी, हम आपकी बातें सिर्फ सुनना ही नहीं समझना भी चाहते हैं।
शांभवी
जी, पिताजी यदि आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ करना चाहिए तो हमारी आपसे बस एक ही अपेक्षा होती है कि आप सभी से ये कहें कि हम आपका वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसा आप चाहते हैं।
आजकल की पीढ़ी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।